أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين
یہ پہلی دو آیات جو سورہ الحجر سے میں نے تلاوت کی ہیں بسم اللہ کے علاوہ جو دو آیات ہیں ان کا مطلب یہ ہے الف لام را میں ہوں اللہ خوب دیکھنے والا دل کا آیات الکتاب الحکیم یہ آیات ایک بہت ہی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں کیا لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا ہے کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کرنی شروع کر دی ایک شخص کو اپنی وحی کے لیے چن لیا اور تھا وہ اس سے پہلے انہی میں سے کس مقصد کے لیے اسے وحی کی خاطر چنا گیا وحی میں کیا کہا گیا ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم کہ لوگوں کو تو ڈراؤ مگر ان میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کا قدم ان کے خدا کے نزدیک صدق کا قدم ہے انہیں اللہ کی نظر میں سچائی کا قدم عطا فرمایا گیا ہے قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین کافر یہ بات سن کر کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین یہ تو یقیناً ایک بہت بڑا کھلا جادوگر ہے اس آیت پر غور کرنے سے جس میں ایک تعجب کا اظہار بھی پایا جاتا ہے انسان خود ایک قسم کے تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے اکان للناس عجباً میں ایک تو وہ تعجب ہے جو کافروں کو اس واقعہ پر ہوا اور ایک اس طرز کلام میں ان پر تعجب ہے تم پر تعجب ہے تمہاری عجیب حالت ہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے یہ کیسا واقعہ ہو گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جہاں تک مضمون کا تعلق ہے بظاہر اس مضمون کا جادو سے کوئی تعلق نہیں. مثلا کسی انسان کا یہ کہنا کہ تم لوگوں کو میں ڈراتا ہوں تو ہلاکت سے ان بدیوں کے نتیجے میں جو تمہیں پیدا ہو چکی ہیں, اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ان کا قدم ان کے رب کے نزدیک سچائی کا قدم ہے, اس اعلان کا جادو سے کیا تعلق ہے؟ اس کے نتیجے میں ان کا حیرت میں مبتلا ہو جانا اور یہ اعلان کرنا کہ ان ہاضا ساحر مبین, یہ اعلان کرنے والا تو بہت ہی بڑا کھلا کھلا جادوگر ہے. جب اس مضمون پر ہم غور کرتے ہیں تو بہت ہی لطیف اور حکیمانہ مضمون نگاہ کے سامنے ابھرتا ہے, اور ساتھ ہی دل بے اختیار یہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ کتاب حکیم ہی کی آیات ہیں, بہت گہری حکمت والی کتاب کا مضمون ہے. سب سے بڑا تعجب تو یہ تھا کہ رجل منہم, ایک شخص جو ان لوگوں میں سے تھا, اسے اللہ نے وحی کے لیے چن لیا. وہ سوسائٹی جس میں انبیاء تشریف لاتے ہیں وہ تو فساد کا گڑھ بن چکی ہوتی ہے, جھوٹ اس میں اس طرح پنپتا ہے جیسے شاداب زمینوں میں سبزیاں پنپتی ہیں. ہر طرف گندگی, فساد, جھوٹ, دغا بازی, دجل, اس کی نشو نما ہو رہی ہوتی ہے. اس زمین سے ایک کلمہ طیبہ کا نکلانا, ایسی رویدگی کا نمودار ہونا جو آسمانی رویدگی ہو, یہ تو واقعی بڑے تعجب کی بات ہے. تو پہلا تعجب تو یہ ہے کہ اوہینا الی رجل منہم, ان جیسے لوگوں میں سے خدا نے وحی کے لیے ایک بندے کو چن لیا, اور پھر ایسا چنا کہ جو ان جیسے لوگوں میں ویسی ہی تبدیلیاں پیدا کر رہا ہے جیسی اس کے اندر خدا کا ہاتھ لگنے کے نتیجے میں لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ ہے وہ کھلا کھلا جادو جس کی وجہ سے ان کی عقلیں غرتہ حبر حیرت میں ڈوب گئیں. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی نکلے اور اتنا مقدس ہو جائے, اتنا عظیم شان ہو جائے کہ خدا کی پیار کی نگاہیں اس پر پڑنے لگیں اور وحی کے لیے خدا تعالیٰ اسے مختص فرما لے, مصطفیٰ بنا لے, مرتضیٰ بنا لے, اور پھر وہ آگے سے یہ جادو دوسروں پر چلانے لگے. یعنی اسی گندی سوسائٹی سے گندے لوگوں کو ہاتھ میں لے اور ان کی کایا پلٹا لے, اور وہ جن کا قدم ہمیشہ جھوٹ پہ پڑا کرتا تھا, جن کی ہر روش جھوٹ کی روش ہوا کرتی تھی, جن کا معاشرہ جھوٹا تھا, جن کی عدالتیں جھوٹی تھیں, جن کی زندگی کا ہر پہلو, ان کے اقتصادیات, ان کی بول چال, ان کی سیاست, ان کا رہن سہن, ہر چیز جھوٹ پر مبنی تھی, اس پر ہاتھ ڈالا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اس سوسائٹی کو ایسا تبدیل فرمایا کہ جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے اس کا قدم خدا کے نزدیک قدم اسد بن جاتا ہے. اور اندر ربہم نے اس صدق کے مضمون کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. یعنی سوسائٹی کی نظر میں اچھے نہیں ہوئے, صرف اتنا گہرا صدق ہے, اتنا حقیقی صدق ہے کہ آسمان سے ان کا رب یہ گواہی دیتا ہے کہ ان کا قدم صدق پر پڑ رہا ہے, صدق کے سوا ان کا قدم کسی اور چیز پر نہیں پڑ سکتا. اب سوال یہ ہے کہ یہ قدم صدق ہے کیا چیز اور کیسے نصیب ہوتا ہے؟ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے رکھ دیا, کھول کے اس مضمون کو بیان فرما دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سچی وحی پانے والوں کے غلاموں کو یہ قدم صدق عطا ہوا کرتا ہے. اور چونکہ یہ ایک ایسی حیرت انگیز تبدیلی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, इसलिए ये कदम असिद्ध उस आखा के सिद्ध पर सबसे बड़ा गवाह बन जाता है जिसके कदमों के तुफैल उन सरों को जो उन कदमों को छूते थे, सिर्फ उनको ही सिद्ध कदा नहीं हुआ, उनके कदमों को भी सिद्ध कदा हो गया। कितना बुलंद मुकाम जाहिर होता है हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यही फरमाया कि हमने मोहम्मद मुस्तफा को कदम सिद्ध कदा फरमाया है, फरमाया हमने मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों को कदम सिद्ध कदा फरमाया। पर सबसे बड़ी गवाही आका की सच्चाई के लिए उसके गुलामों के कदम हैं जो हमेशा सिद्ध पर पड़ते हैं। आज भी बहनी ही यही सूरत है, आज भी अहमदियत जो मुख्तलिफ दुनियाओं में जादू जगा रही है, गंदी सोसाइटियों से लोग निकल के आते हैं और हैरत अंगेज तौर पर उनमें पाकिजगी की इलामतें जाहिर होने लगती हैं, यही सबसे बड़ी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत की दलील है। और अगर यह दलील कमजोर हुई तो जमात अहमदिया इसकी जिम्मेदार होगी, जमात अहमदिया खुदा के हजूर इसके लिए जवाबदेह होगी। जब तक आप कदम सिद्क इख्तियार नहीं करते, हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सिद्क की गवाही दुनिया पर साबित नहीं कर सकते। और अगर दुनिया आपके कदम को देख कर ठोकर खाएगी तो आप भी खुदा तआला के हजूर उसी तरह जवाबदेह होंगे। इसलिए जरूरी है कि हम मालूम करें कि यह कदम सिद्क अता कैसे होता है। कदम सिद्क का ताल्लुक, ये तो बिल्कुल वाज़ह और खुली बात है, नजर की सफाई और नजर की सच्चाई से है। जब तक नजर साफ और सुथरी ना हो, जब तक नजर सच्ची ना हो, कदम सिद्क अता हो ही नहीं सकता। कदम तो एक अंधी चीज है, कदम तो पैरवी करता है उस नूर की जो नूर नजर कहलाता है। अगर वो नूर कदमों की रहनुमाई कर रहा है तो हमेशा वो कदम सही जगह पड़ेगा। देखें, वो कदम जो दिन को सही रास्ते पर पड़ते हैं, कीचड़ की पहचान खुश्क रास्ते से कर लेते हैं, साफ रास्ते को गलाजत से मुमताज करके दिखाते हैं, उसकी वजह नूर नजर ही है। दिन को चूंकि नूर नजर वाजे होता है, इसलिए कदम हमेशा सच्चाई पर पड़ता है। लेकिन रात के धुंधलके में और जूं जूं ये अंधेरा गहरा होता चला जाए, इंसान के लिए ये इम्कान बढ़ता है, ये इस्तेमाल बढ़ता चला जाता है कि उसका कदम गलत जगहों पर ऊपर है। इसलिए बराह रास्त कदम सिद्क का नूर नजर से ताल्लुक है। जब तक नूर दुरुस्त ना हो उस वक्त तक कदम दुरुस्त नहीं हो सकते, इसलिए वही से भी इसका ताल्लुक है। सारी चाबी इस मुहिम की इन अल्फाज में थी, अनौहैना इला रजुल मिन। अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही का नूर अताना होता तो हरगिज ये कसरत के साथ कदम सिद्क जो अता हुए आपके गुलामों को ये अता नहीं हो सकते। वो नूर है जो फिर जिसने आपकी जात को नूर बना दिया। और कुरान करीम में मुतअद्दिद जगह यह जिक्र मिलता है कि हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर बन चुके थे। वो किताब जो आप पर उतारी गई वो भी नूर थी, और वो किताब जिस पर उतारी गई वो भी नूर था, जिसका मुजस्सम वजूद नूर हो चुका था। और ये वही की बरकत से है। लेकिन ये बरकत आगे आपके गुलामों को अता हो सकती थी और आपने अता फरमाई। ये है वो खुशखबरी का मजमून जिसको समझने के बाद इंसान को कदम सिद्क के इख्तियार के राज मालूम हो जाते हैं। ये वही का नूर हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि आगे इन आपके गुलामों को भी वो नूर अता हुआ और खुदा तआला ने वादे इत्तला फरमाई आपको कि आपके गुलामों को भी वो नूर मैं अता कर चुका हूं। जिन्होंने फरमाया नूरुहुम यसा बैन अयदीहिम व बिएमानिहिम यकूलूना रब्बना अतमिम लना नूरना वाग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایسے ہیں کہ نورہم یسعا بین ایدیہم, ان کا نور ان کے آگے آگے چلتا ہے, وبایمانہم اور ان کے دائیں ہاتھ پہ ان کے ساتھ رہتا ہے. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا, اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دے. واغفر لنا, اور ہماری بخشش فرما. انک علی کل شیء قدیر, یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. یہی وہ نور ہے جس کا ذکر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ میں فرماتے ہیں, اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنظر اللہ بنور اللہ. کہ لوگوں, مومن کی فراست سے ڈرا کرو, یقین وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ جو گزشتہ جو خطبے میں میں نے تقویٰ کی آنکھ بیان کی تھی, تقویٰ کی آنکھ کی بات بیان کی تھی کہ وہ اللہ کی آنکھ ہے, یہی مراد ہے اس سے کہ مومن کی فراست سے, اس کی فہم سے, اس کی حد ادراک سے بچو, ڈرو. اس کی نظر سے کوئی چیز بھی تمہاری پوشیدہ نہیں رہے گی, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. لیکن جہاں تک اللہ کے نور کا تعلق ہے, وہ تو لامحدود ہے, اور وہ نور ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو ایک کو ایک اور دوسرے کے ساتھ فرق فرق سلوک کرنے والا ہو. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کا نور بصیرت اور ہے, دوسرے مومن کا نور بصیرت کچھ اور ہے. ایک کا مقام اور ہے اور دوسرے کا مقام اور ہے, اور ان کے نوروں میں فرق ہے. یہ راز قرآن کریم کی یہ آیت ہم پر کھول رہی ہے کہ در حقیقت اگرچہ اللہ کے نور سے مومن دیکھتا ہے, لیکن ہر شخص کے اندر اس نور کو اختیار کرنے کی ایک استعداد عطا ہوئی, اور وہ استعداد ایک خاص حد تک نور کو اختیار کرنے کی توفیق بخشتی ہے. اور اکثر لوگ اس استعداد کے ہوتے ہوئے بھی خدا تعالیٰ سے پورا نور حاصل نہیں کرتے, اور اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ہمیں نور بصیرت خدا کی طرف سے عطا ہوگا. لیکن بعض لوگ جو زیادہ فراست رکھنے والے ہیں, جو اس مضمون کی حکمت کو سمجھتے ہیں, وہ باوجود اس کے کہ وہ اپنے اندر ایک نور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, مسلسل یہ دعا کرتے چلے جاتے ہیں, ربنا اتمم لنا نورنا, اے ہمارے رب ہمارے نور کو تمام فرما دے, مکمل کر دے. جتنا بھی ہمیں حاصل ہوا ہے اس سے زیادہ کی ہمیں تو نے ضرور استعداد بخشی ہوگی, اس لیے ہمیں ایک مقام پر نہ کھڑا رہنے دے, بلکہ اس نور کو اتمام کا نور کا اتمام فرما دے, اسے مکمل کر دے. اتممت علیکم نعمتی کے مضمون بھی ابھی ہم سمجھ آ گیا, یعنی مومن تک جو مختلف درجات ہیں صالح کے, ان میں آخری مقام مقام نبوت وہ مقام ہے جہاں انسان کا نور تمام ہو جاتا ہے اور اسے اپنی استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ کامل نور عطا فرما دیتا ہے. پھر استعدادوں کے فرق کی وجہ سے ان کے نور کی جلوہ گری میں بھی فرق دکھائی دینے لگتا ہے. لیکن ان سے نیچے درجے پر جتنے بھی مومن ہیں, ان سب کو اپنی اپنی استعداد کے مطابق بھرپور نور عطا ہو تو سکتا ہے, لیکن ان کی غفلتوں کی وجہ سے, ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے اکثر کا ظرف کچھ نہ کچھ خالی رہ جاتا ہے. اور جو ان میں سے صاحب فراست ہیں, جن کو خدا خاص طور پر بصیرت کی آنکھ عطا فرماتا ہے, وہ مسلسل اس دعا میں لگے رہتے ہیں, ربنا اتمم لنا نورنا. اور یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یسا نورہم بین ایدیہم و بیمان, ان کے آگے بھی نور چل رہا ہے, ان کے دائیں بھی نور چل رہا ہے, ان کے بائیں بھی. ایمانہم میں دائیں ہاتھ بھی اس مراد ہیں اور دونوں ہاتھ بھی مراد ہیں, یعنی ہر سمت ان کے نور ہی نور ہیں. और उस पर वो तकब्बुर इख्तियार नहीं करते। एक और लतीफ नुक्ता इस बात का समझ आया कि नूर में हर तरफ से घिरे हुए हैं, जिस तरफ जाते हैं उन्हें कदमा सिद्क भी अता हो रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो जानते हैं कि हमारी कोई भी हकीकत नहीं है। और ये नूर वो सारा नूर नहीं है जो खुदा बंदे को अता फरमा सकता है, इसके अलावा भी नूर है, इसके अलावा भी जिला के और लताफतों के और मरातब हैं और मुकामात हैं और ऐसी सिमतें हैं जिनसे हो सकता है हम बिल्कुल बेखबर हों। तो तकवा के नूर का सैकल होना ये सारी जिंदगी की मेहनत का काम है, और इसका आखिरी मरतबा सिर्फ अंबिया को नसीब होता है। अंबिया से निचले दर्जे के जितने लोग हैं वो अपने अपने नूर के मुकाम को भी पूरी तरह हासिल नहीं कर सकते जो उनके लिए मुकद्दर है, बल्कि कुछ ना कुछ उस सिमत में बढ़ते रहते हैं और सारी जिंदगी उनके नूर के हसूल का सिलसिला जारी रहता है। अगर नूर मुख्तलिफ है तो कदम सिद्क भी मुख्तलिफ होगा, उसका मुकाम, उसका मर्तबा, उसका हुजम, उसकी वसूतों में जरूर फर्क होगा। और यह राज हमें हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम ने समझा दिया जब यह फरमाया कि मैं एक वसी अजीम दुनिया को अपने सच्चाई के तहत अकदाम देखता, कि मेरे सच्चाई के कदम इतने वसी हैं, वो कदम असिद्क यानी सच्चाई का कदम जो हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलातो वसलाम को अता हुआ है वो इतना बड़ा है, इतना वसी है कि एक आलम के आलम को, एक वसी दुनिया को उस कदमों के नीचे देख रहे हैं। तो कदम सिद्क भी एक कदम नहीं है कि हर मोमिन समझे कि मुझे कदम सिद्क अता हो गए। कदम सिद्क के भी मुख्तलिफ मरातिब हैं, मुख्तलिफ हुजम हैं, मुख्तलिफ इसकी वसतें हैं, और उनका बराह रास्त ताल्लुक उस नूर की वसत से है जो अल्लाह ताला की तरफ से उसे नसीब होता है। इसलिए वो लोग जो रास्तबाज कहलाते हैं, जब वो ये कहते हैं कि हमारा नूर तमाम फरमा, इसका मतलब यह है कि वो निहायत मुनकसर मिजाज बंदे होते हैं। वो अपनी रास्तबाजी के बावजूद समझते हैं कि हमारे अंदर बहुत सी कमजोरियां, बहुत से खला हैं, बहुत से अंधेरे हैं, बाकी हैं। जब तक खुदा ताला की तरफ से हमारा नूर कामिल ना हो जाए, हमारी जिंदगी का हर गोशा मुनव्वर नहीं हो सकता, हमारा हर कदम रास्ते इकदाम नहीं कहला सकता। इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए खुदा ताला की रहमत की तरफ उम्मीद की निगाहों से देखते चले जाते हैं और इंतजार के साथ इंतजार करते चले जाते हैं कि अल्लाह हमारे नूर को बढ़ा। नूर की आंख जो खुदा की तरफ से अता होती है, जिसे हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यनज़ुरु बिनूरिल्लाह, इस पर मजीद गौर की जरूरत है। ये कोई ऐसी फर्जी चीज नहीं है जो, जैसा कि नूर का तसव्वुर अमूमन गैर अहमदी सोसाइटी में पाया जाता है, कि कोई ऐसी फर्जी मा वराउ तबीयात चीज है कि जो इसके मुतलिक एक महूम सा तसव्वुर तो हो सकता है लेकिन उसकी हकीकत, उसकी कुनों को हम पा नहीं सकते। बल्कि अमरे वाकया यह है कि नूर का मजमून बहुत ही वाज़े है, बहुत ही खुला खुला है, और रोजमर्रा की जिंदगी में हम में से हर शख्स अगर चाहे तो अपने नूर की पहचान कर सकता है, उसे जान सकता है, और नूर की पहचान उसके कदमों से होगी। इन दोनों के साथ क्योंकि दोनों का आपस में क्योंकि गहरा ताल्लुक है, जहां वो रोजाना गलत जगह पे कदम रखता है वहीं उसको महसूस हो जाना चाहिए कि यहां मेरे नूर ने मेरा साथ छोड़ दिया। जहां वो सही मुकाम पर कदम रखता है वहां उसे एहसास हो जाना चाहिए कि यहां मेरे नूर ने मेरी रहनुमाई की है। और एक ही दिन में सारा दिन के हालात पर अगर इंसान अपनी जिंदगी में गौर करे तो बहुत खुलकर, जिस नूर में तो कोई इश्तबा की बात ही नहीं होनी चाहिए, बहुत खुलकर उसे अपने नूर के हालात नजर आने शुरू हो जाएंगे। वाज़े तौर पर वो देख लेगा कि कहां कहां मेरे कदम सच्चाई पर पड़ रहे थे, कहां कहां किज़्ब पर पड़ रहे थे, کتنا نور بصیرت مجھے خدا کی طرف سے عطا ہوا اور کتنا نہیں ہوا. یہ تو خیر عام اور سادہ نظر آنے والی باتیں ہیں, لیکن اس کے علاوہ کچھ نور کے معاملات ہیں جو بہت سے صاحب فراست لوگوں پر بھی مبہم ہو جاتے ہیں, اور یہاں سے پھر اگلے قدم شروع ہوتے ہیں. ایک تو روزمرہ کی ابتدائی نور ہے جو سالے کی ابتدائی زندگی سے تعلق رکھنے والا ہے. ایک نور کے وہ باریک تر باریک پہلو ہیں جو اس کو مختلف ترقیات کے مقام عطا فرماتے چلے جاتے ہیں, یا جن کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان مختلف ترقیات سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن ان کی علامتیں بھی قدموں میں ملتی ہیں, اور ہمیشہ ہمارے ہاتھوں کی پہنچ میں رہتی ہیں. ہم معلوم کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو فراست کے ساتھ ہم ان کے نقوش پا سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ نور کی لطافتیں کیا تھیں اور کس مرتبے پر کوئی انسان کھڑا ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قدم صدق کر کے مضمون کو واضح فرما دیا, قدم تو ہمیشہ زمین کے ساتھ چمٹتے ہیں اور لازمن زمین پر پڑتے ہیں. اس لیے نور کا جو دوسرا کنارہ ہے اس کا اہل دنیا سے گہرا تعلق رہتا ہے. اہل دنیا یہ نہیں کہہ سکتے خدا تعالیٰ کو کہ اے اللہ ہم کیسے اس شخص کے نور کو پہچانتے, کیونکہ نور تو ایک آسمانی چیز ہے, ہم زمینی لوگ تھے, ہمارے پاس ذریعہ کوئی نہیں تھا, کوئی استعداد نہیں تھی کہ ہم یہ معلوم کر سکتے کہ تیرا نور کس کو نصیب ہوا ہے. لیکن قدم جو نور کا دوسرا کنارہ ہے وہ تو ہمیشہ زمین پر چلتے ہیں, اس لیے اہل زمین ان قدموں کے سلوک سے پہچانتے ہیں کہ یہ کیسے قدم ہیں. اگر ایسے لوگوں کے معاملات اہل دنیا سے مختلف ہوں گے تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ خدا کے نور کے معاملات نہیں ہیں. تبھی تو وہ تعجب میں مبتلا ہوئے اہل عرب, باوجود انتہائی دنیا دار ہونے کے, باوجود اس کے کہ ان کی سوسائٹی کا لب لباب یہ تھا کہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ان کو ڈراؤ, ان کو بتاؤ کہ اگر تم ایمان کے ذریعے اپنے اندر تبدیلیاں نہ پیدا کر سکے تو لازمن ہلاک ہوں گا. ہلاکت کی ساری علامتیں ان میں ظاہر ہو چکی تھی. اس کے باوجود کچھ دیکھا تھا انہوں نے جو تعجب میں مبتلا ہوئے, اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے قدم سچائی کے قدم تھے, اور ان قدموں کا تعلق دنیا سے ہمیشہ رہا ہے. اہل دنیا ان قدموں کی چاپ سے پہچانتے تھے, ان کی چال ڈھال سے پہچانتے تھے, ان کے رخ سے پہچانتے تھے کہ یہ کیسے لوگ, اور تبدیلیاں دیکھتے تھے تو تعجب میں مبتلا ہوتے تھے. بغیر تبدیلی محسوس کیے کیسے تعجب میں مبتلا ہوئے, کیسے انہوں نے یہ اتنا حیرت انگیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا. بظاہر انکار ہے لیکن حیرت انگیز خراج تحسین پیش کیا کہ ساحر مبین ہے, یہ تو حیرت انگیز کھلا کھلا جادوگر ہے, کن لوگوں کو پکڑتا ہے اور کیا بنا کے رکھ دیتا ہے. تو وہ تبدیلیاں جو مومن کی ذات میں دنیا کے معاملات میں بھی پیدا ہوتی ہیں وہی اس کے نور کے پیمانے بن جاتی ہیں. وہ اہل دنیا کو بھی بتا دیتی ہیں کہ یہ شخص صاحب نور ہے یا صاحب نور نہیں ہے. اس پہلو سے جب میں جماعت کے مختلف حالات پر غور کرتا ہوں تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں جہاں بھی کوئی خرابی دکھائی دیتی ہے قدم صدق کی کمی نظر آنے لگتی ہے. بالکل صاف اور کھلی یوں لگتا ہے جیسے کسی شاہراہ پر چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, یہاں اس کا قدم فلان جگہ صحیح جگہ پڑا, یہاں غلط جگہ پڑا, یہاں کانٹوں میں چلا گیا, یہاں پھولوں پر آ گیا. صاف ستھرا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا واقعہ گزر رہا ہے, اور اس کے پس منظر میں کسی نہ کسی جگہ نور کی کمی دکھائی دینے لگتی ہے. اور روزمرہ کے معاملات ہیں یہ قدم, کوئی فرض کسے نہیں ہے. آپس میں جب اختلاف پیدا ہوتے ہیں, جب آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو کیوں قدم غلط پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نظریں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں. ایک ہی واقعہ کو ایک نظر اور طرح دیکھ رہی ہے اور ایک اور نظر اور طرح دیکھ رہی ہے. हालांकि नूरुल्ला के साथ अगर देखा जाता तो दोनों निगाहों को एक ही चीज नजर आनी चाहिए थी। नूरुल्ला तो एक हकीकत को दो तरह देख ही नहीं सकता, नामुमकिन है। लेकिन जितने भी इख्तलाफात हैं सब जगह भेंगी आंखें आपको नजर आ जाएंगी। मामलात की आंखें भेंगी हों और इंसान ये दावा करे कि मैं नूरुल्ला से देख रहा हूं, इससे ज्यादा तवस्सुल और क्या हो सकता है। और आंखें भेंगी हों और कदम दुरुस्त पड़े, कदम तकवा और सिद्दत के कदम हों, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए मामलात से कदम पहचाने जाते हैं और कदमों से आंखों का मैयार पता चलता है। यह महसूस हो जाता है कि किस हद तक आंखें सीधी नजर रखने वाली थी और किस हद तक भेंगी आंखें थी। हर रोज आम जिंदगी में छोटी छोटी बातों में आंखों का भेंगापन बिल्कुल सफा दिखाई देने लगता है। एक खानदान है, उसकी बच्ची के ऊपर जुल्म हो रहे हैं और उसके नजदीक यानी अपनी बच्ची के मुतल्लिक जो वो तवक्कुआत रखता है उसको एक खास आंख अता हुई है उसके लिए, और वो कहता है कि ये बात भी उस पर जुल्म है और वो बात भी उस पर जुल्म है और फलां बात भी उस पर जुल्म है, उससे बच्चे छुड़ाना उस पर जुल्म है, उसके साथ ये सलूक करना उस पर जुल्म है। लेकिन जब दूसरे की बच्ची का मामला होता है और अपने बेटे का मामला हो तो ये आंख बिल्कुल बदल जाती है। वो कहते हैं हमारे बेटे पर ये जुल्म हुआ है, बेटे का हक है बच्चे और बेटे का हक ये है और बेटे का हक वो है, और देखो वो लड़की कैसी जालिम और शैतान लड़की है, ये काम कर दे। अब इन दोनों आंखों को बयाकफ खुदा के नूर की आंखें कैसे करार दें, क्योंकि अल्लाह का नूर तो भेंगा नूर नहीं है। अल्लाह का नूर तो एक हकीकत को एक ही हकीकत के तौर पर देखता है। बस ये कदम है, यही कुरान करीम में मजमून है कि उनको कदम सिद्क अता होता है और कदम सिद्क हमेशा सही राह पे पड़ता है, गलत राह पे नहीं पड़ता। कभी गन पे पड़ जाए, कभी सही रास्ते पे पड़ जाए। जहां वो गन पर पड़ेगा वो कदम सिद्क रहेगा नहीं, तो दो मुख्तलिफ रस्ते हो गए। दावा यह है कि हम एक ही नूर से देखने वाले हैं। दावा यह है कि हमारी आंखें हकायक को उसी तरह देखती हैं जैसे खुदा हमसे तवक्कु रखता है, और जब उन आंखों से देख के रास्ते अख्तियार करते हैं तो एक मशरिक की तरफ चल रहा होता है और एक मगरिब की तरफ चल रहा होता है। दोनों के कदम के रुख, उनकी नहज, उनकी तरस बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। तो कौन कहता है कि लतीफ मामलात में नूर दिखाई नहीं दे सकता। कुरान करीम ऐसी अजीम शान किताब है कि लतीफ मामलात में भी बताता है आपको कि कैसे देखो, उनको कदमों के जरिए देखो। वो तो तुम्हारी पहुंच से बाहर नहीं, वो तो काफिरों की भी पहुंच में थे, इसलिए उनकी शनाख्त के गुर सीखो तो तुम्हें खुदा तआला के नूर के शनाख्त के गुर मालूम हो जाएंगे। इसी तरह तनकीद है, मुख्तलिफ खतूत मुझे मिलते हैं जिनमें कसरत से तनकीद पाई जाती है, और हर तनकीद करने वाला यह समझ रहा होता है कि वो कदम सिद्क के साथ मामले में आगे बढ़ रहा है, सही रास्ते पर, सही नेच पर वो चल रहा है, और वो बड़ी सच्चाई से अपनी तरफ से देख रहा होता है कि ये बात गलत है, मुझे बताना चाहिए ये बात क्यों है, फलां लोग गंदे हैं, फलां किस्म के लोगों की हरकतें खराब हैं, और वो मुसलसल उस तनकीद में आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन चूंकि कदम सिद्क नहीं होता, इसलिए पहचानने वाली आंखों को वो मालूम हो जाता है कि यहां कदम सिद्क नहीं है। तनकीद की आंखें भी दो किस्म, एक ही किस्म के मामलात को दो तरीक पर नहीं देख सकती अगर वो खुदा के नूर से देख रही हो। लेकिन अजीब बात है कि अक्सर नाकेदीन की आंखें एक ही किस्म के वाकयात को मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ तरह देख रही होती है। बाज लोगों से दिल में तासुब होता है, उनकी हर हरकत में वो बुराई ढूंढ रही होती। बाज लोगों से मोहब्बत का ताल्लुक होता है, वहां वही हरकतें हो रही होती हैं तो वो नजर भी नहीं आ रही होती। और जितना जितना तकवा का मेयार गिरता है या नूरे खुदावंदी से दूरी होती चली जाती है, उतना उतना ये मामला उनके नफ्स के ज्यादा उतना इनकी कजी का दायरा फैलता चला जाता है। सबसे पहली बात अपने नफ्स के हालात को ना देखना है। जिनको खुदा का नूर अता ना हो उनकी नजर खातनकीद की कैसी ही तेज क्यों ना हो, वो अपनी कमजोरियों को नहीं देख रही होती। और इस बुराई में अक्सर इंसान मुब्तला है। कहते हैं चिराग के लिए अंधेरा है, ये दुनिया के मामलात के लिए तो ठीक है, लेकिन खुदा के नूर के चिराग के लिए तो कोई अंधेरा नहीं। हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिराज मुनीरा के नीचे तो कोई अंधेरे का सवाल नहीं, बल्कि जितना उनके नीचे था उतना ही ज्यादा वो साहिब नूर बना। तो अल्लाह के चिराग तले आना तो नूर के कदमों के नीचे आना है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जब फरमाते हैं सच्चाई के कदमों के नीचे देखता हूं दुनिया को, तो चिराग तले अंधेरा तो मुराद नहीं है। मुराद यह है जो इन कदमों के नीचे हैं वो सबसे ज्यादा साहिब नूर है। इसलिए जो शख्स अल्लाह के नूर से देख रहा हो सबसे ज्यादा उसको अपना अंदरूना दिखाई देना चाहिए, सबसे ज्यादा उसको अपने नफ्स की हकीकत से आशना होना चाहिए। अगर नूर कामिल नहीं है तो दुरुस्त है कि कुछ खामियां भी उसको नजर आएंगी, कुछ तारीख गोशे भी दिखाई देंगे, लेकिन दिखाई जरूर देंगे। ये हो ही नहीं सकता कि साहिब नूर हो और अपने नफ्स के हालात से गाफिल हो। इसलिए जमात को सबसे पहले तो अपने नफ्स के उत्तर झुकना चाहिए, इन मानों में कि अपने नफ्स की तनकीद को खुदा की आंख से देखे, अपने नफ्स के साथ वैसा मामला करे जैसे अल्लाह का नूर उसके नफ्स को देख रहा है, और खूब अच्छी तरह अपने अंदरूने को टटोले और महसूस करे और देखे और खंगाले, मालूम तो करे कि वो है क्या चीज। इस हैसियत से जो शख्स अपनी नफ्स को देख लेता है उसको अपने करीबी भी उसी तरह फिर दिखाई देने लगते हैं जैसे अपने दुश्मन दिखाई देने लगते हैं। आंख कोई फर्क नहीं करती, हुस्न और बदी तो फर्क करेंगे, बहरहाल हुस्न हुस्न नजर आएगा और बदी बदी नजर आएगी, लेकिन आंख फर्क नहीं करेगी कि हुस्न को बदी देखने लग जाए और बदी को हुस्न देखने लग जाए। बस आराज अपने नफ्स से होगा। जो शख्स अपने नफ्स की हकीकत से गाफिल रहता है और आंखें बंद रखता है और फर्जी तौर पर अपने ऊपर झूठे रहम करता चला जाता है और अपने दुश्मन पर झूठे जुल्म करता चला जाता है, यानी ऐसे जुल्म जिनके अंदर कोई हकीकत न कोई वजह जवाब न हो, वो शख्स ये कहे कि मैं खुदा के नूर से देख रहा हूं ये नामुमकिन है, बिल्कुल झूठा दावा है। और जो शख्स अपने अंदर मुख्तलिफ सलूक करता है, अपने बाहर मुख्तलिफ सलूक करता है, उसकी ये टेढ़ी आंख फिर हमेशा टेढ़ी रहती है, सारे मामलात में टेढ़ी हो जाती है। ये नामुमकिन है कि अंदर की आंख टेढ़ी हो और बाहर की आंख सीधी हो। चुनांचे अक्सर मामलात में खराबियां, फसादात, गलत तनकीदात, एक जुल्म को दूसरी तरफ मनसूब कर देना, एक अंधेरे को दूसरी रोशनी की तरफ रोशनी के मुंह पर मारना, यानी हर चीज की उलट पुलट करके हर सारे निजाम को तहस नहस कर देना, ये सारा मजमून तारीकी का मजमून है, रोशनी का मजमून ही नहीं। और ये जो तारीकी और रोशनी का फैसला है ये हर शख्स की जात के अंदर उसकी पिनहाइयों में होता है। जो शख्स अपने नफ्स की बसीरत इख्तियार कर ले फिर वो दुनिया में चलने के काबिल हो जाता है। जो साहिब बसीरत नहीं है अपने नफ्स के मुतल्लिक, जो अपने आप को गलत निगाहों से देखता है, जहां वो गलतियां करता है वहां वो आंखें फेर लेता है, जहां वो गलती नहीं करता वहां बढ़ा चढ़ा कर देखता है, उसका सलूक फिर अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों से इसी तरह फर्क वाला सलूक हो जाता है। बाद लोग मैंने देखे हैं बजाहिर बड़े नेक भी हैं, नमाजी भी हैं, कई खूबियों के मालिक हैं खुदा के फजल से, लेकिन नूरुल्लाह से देखने कि जो इम्तियाजी शान है वो पूरी तरह आता नहीं होती उनको। बाद लोगों के वो दुश्मन हो जाते हैं और बाद लोगों के दोस्त हो जाते हैं। जो दुश्मन है हाँ वो वैसे कितने ही नेक हो, उसकी छोटी सी कमजोरी भी इतनी उनको बड़ी दिखाई देने लगती है कि वो अपने गुस्से को फिर मेरी जात पे मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। वो मुझसे ये तवक्को रखते हैं कि जिस तरह उनका दिल चाहता है कि इस बदी के नतीजे में इस शख्स को पीस कर रख लें, पांव तले कुचलें, उसको जलील करें, उसे खार करें, उसी तरह मैं भी करूं, उसी तरह निजाम जमात भी करूं। और अगर नहीं करेगा तो फिर देख लिया इंसाफ नहीं। इन अपनी दुश्मनियों को, अपनी नफरतों को वो जमात के जिम्मेदारों की दुश्मनियों और नफरतों में तब्दील करना चाहते हैं। और उनका कदम सिद्क का कदम नहीं है, इससे साबित होता है कि उससे बहुत ज्यादा बुराइयां उनके दोस्तों में मौजूद होती हैं और उनको कतन कभी वहम भी नहीं आया कि उनको सजा मिलनी चाहिए। अपनी औलाद में होती है, उनको कभी वहम भी नहीं आता कि उनको सजा मिलनी चाहिए। अपनी बीवियों में होती है, अपने बच्चों में, अपने अंदर, और कोई परवाह नहीं करता। तो कदम सिद्क को दुरुस्त करो, उसके बगैर तुम्हारी राहें सही मुतय्यन नहीं हो सकती। उसके बगैर ना तुम्हारे आपस के मामला दुरुस्त होंगे, ना खुदा के साथ तुम्हारे मामला दुरुस्त होंगे। और कोशिश करो कि तुम्हें तुम्हारा कदम सिद्क बड़ा हो और उसके फैज के नीचे और भी लोग हैं। तुम्हारे कदम सिद्क की बरकत से और कौमें बरकत पाएं, और यह कदम तुम्हारे नूर के निस्बत के साथ बड़ा होगा। इस गालिबन इस मफहूम को ना समझने के नतीजे में बाद पुराने बुजुर्गों के मुरीदों ने यह गलती की कि उनके कदमों के जाहिरी निशान बड़े करने शुरू किए। और बाद जगह हमने देखा है कि यह फलां बुजुर्ग का कदम है, वो पूरी चट्टान के ऊपर एक कदम आया। अमरे वाकया यह है कि इसमें कुछ हकीकत जरूर थी। समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए उन बुजुर्गों ने कोई ऐसी बात की होगी कि जिसके नतीजे में, या उनके आरिफान या मुरीदों ने कुछ ऐसी बात की होगी कि जिसके नतीजे में यह महसूस हुआ हो कि उनके कदम बढ़े थे। और बाद में दुनियादारों ने, जिनकी नजरें इरफान से आ रही थी, उन्होंने समझा कि वाकईतन जाहिरी कदम बढ़े थे, हालांकि बुजुर्गी को कदमों से क्या नस्बत है। कदमों को तो अकल से भी, जाहिरी कदमों को तो अकल से भी उलट की नस्बत है। हमारे यहां कहते हैं कि पांव बड़े गंवारों के और सर बड़े सरदारों के। तो नेकों के पांव बड़े, ये तो अजीब सी बात है, वो समझ नहीं सके। ये राज हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कुरान से पाकर हमें समझाया कि मैं एक आलम के आलम को अपनी सच्चाई के कदमों के नीचे देखता हूं। इतना बड़ा कदम सिद्क अता फरमाया है खुदा ने कि दूर दराज तक आने वाले लोग उन कदमों के नीचे से बरकत पाएंगे, उनसे सच्चाई हासिल करेंगे। तो ना सिर्फ ये कि कदम सिद्क को हासिल करें आपसे फैज पाने के लिए, तो आज की दुनिया ही नहीं, आइंदा क़यामत तक आने वाली दुनियाएं मुंतजर बैठी। आपके कदम बड़े होंगे तो दुनिया के नसीब बड़े होंगे, और आपको कदम बड़े नहीं मिल सकते जब तक खुदा का वो नूर तो आपके अंदर कामिल ना हो जाए, जिसके लिए अहले फिरासत बंदे हमेशा यह दुआ करते हैं, रब्बना आत्मिन लना नूरना। ऐ खुदा, नूर तो बहुत तूने दिया, आगे भी नूर है और पीछे भी, दाएं भी और बाएं भी, लेकिन हमारे दिल को तसल्ली नहीं, हमारा ज़र्फ और भी बड़ा मालूम होता है। हमारे नूर को कामिल करना, जिस हद तक हमारी इस्तेआत है उस हद तक हमारे नूर को बढ़ाते चलना।